ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवतीनष्टकी। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 60 से लेकर 69 तक 69 तक आज हम लेंगे। पुंसाम मायिनाम सम्यग् भजताम भाववर्धन श्रेयो दिशति भीमतम् यद्धर्मादिषु देहिनां विरक्तश्चेन्द्रियरतो भक्तियोगेन भूयसा तं निरन्तरभावेन भजे ताद्वा विमुक्तये। इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भक ययो मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचर्चितम् तपोवनं गते तस्मिन् प्रविष्टोऽन्तःपुरं मुनि अर्हितार्हणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम्। नारद उवाच राजन् किं जायसे दीर्घम् मुखेन परिशुष्यता किं वा नरिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुत। राजोवाच सुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रेणेना करुणात्मना निर्वासित पञ्चवर्ष सह मात्रा महान् कवि अप्यनाथं वने ब्रह्मन् अस्मादन्त्य अर्भकं वृका शान्तं शयानं शूदितम् परिम्लानमुखाम्बुजम् अहो मे बत दोरात्म्यम् स्त्रीजितस्योपधारय यो अंकं प्रेमणारुरुक्षन्तम् योऽङ्कं प्रेम्णारुरुक्षन्तम् नाभ्यनन्दमसत्तम। नारद उवाच मामाशु च स्वतनयम् देवगुप्तं विशाम्पते तत्प्रभावम विज्ञाय प्रावृङ्के यद् अशो जगत् सुदुष्करं कर्म कृत्वा लोकपालेरपि प्रभु येष्यति चरितो राजन् यशो विपुलयंस्तव। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी नुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाद श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने प्रचोदिता जे न पुरा सरस्वती वितन्वताज सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुर्भूत किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदता भूर्तेर्महत भी यही मा पुरो विभू निर्मायशेते यदमूष पुरुष भुंक्तेर गुणानशो रशोडशात्मक सोलंक श्रेष्ठ भगवान वचांसि में।
तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति रविवार इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रति रविवार को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण हम सब भक्त कर रहे हैं। भागवत ग्रंथ के रचयिता भगवान वेद व्यास जी हैं। भगवान वेद व्यास जी चार वेद 17 पुराण 108 उपनिषद और भी अन्य अन्य ग्रंथ लिखकर भी जब संतुष्ट नहीं हुए तब जाकर नारद मुनि की कृपा से नारद मुनि की आज्ञा से वेद व्यास जी ने यह भागवत ग्रंथ का की रचना की और सुध गोस्वामी वेद व्यास जी के इस भागवत ग्रंथ के बारे में कहते हैं यस्याम वे श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापहा। यदि कोई व्यक्ति यह भागवत कथा सुनता है तो इस संसार में रहने वाले शोक मोह और भय से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। इस संसार में प्रायः सभी व्यक्ति को शोक मोह और भय सता रहा है। शोक का अर्थ होता है भूतकाल की कुछ बातों को लेकर दुखी होना, इसे शोक कहते हैं। और भविष्य काल की बात को सोचकर दुखी होना, इसे चिंता कहते हैं। शोक और चिंता ये दोनों दुख देने वाले हैं और शोक और चिंता इतना दुख देते हैं, इतना दुख देते हैं। एक भक्त तो कहते हैं चिंता चिता अपि गरियसी, ये चिंता जो है चिता से भी ज्यादा दुख देती है। चिता जानते हैं, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे चिता पर लेटाया जाता है, जलाया जाता है। चिता भी जलाती है और चिंता भी जलाती है, परंतु अंतर इतना है चिता मरे हुए लोगों को जलाती है और चिंता जीते हुए लोगों को जीते जी जलाती है। तो चिंता से सब लोग दुखी हैं। यदि चिंता से और शोक से मुक्त होना चाहते हैं तो यह भागवत ग्रंथ सुनना चाहिए। भागवत की कथा समस्त चिंता और शोक से मुक्त करने वाली है। और मोह। यदि कोई भागवत सुनता है तो मोह से भी मुक्त हो जाता है। मोह का अर्थ होता है इस नाशवंत संसार में शाश्वत बुद्धि कर लेना, ये मोह है। इस संसार को हमारा मानना, संसार की वस्तुओं को हमारा मानना, ये भी एक मोह है। भागवत सुनकर हम मोह से मुक्त हो सकते हैं और भागवत सुनकर हम भय से मुक्त हो सकते हैं। इस संसार में प्रायः सब लोग भयभीत है, डरते हैं। कुछ लोग अपने टीचर से डरते हैं, कुछ लोग अपने माता पिता से डरते हैं, कुछ लोग अपनी पत्नी से डरते हैं, तो कुछ लोग अपने सास ससुर से डरते हैं, कुछ लोग समाज से डरते हैं, कुछ लोग अपने मालिक से, बॉस सेठ से डरते हैं, और किसी ना किसी से डरे या न डरे, परंतु प्रायः सब लोग मृत्यु से तो सब लोग डरते हैं। सब लोग डरते हैं, भय। परंतु भागवत सुनने से यह भय से हम मुक्त हो सकते हैं। तो क्या भागवत सुनने की का यही फल है शोक मोह और भय से हम मुक्त हो जाएंगे? सूद गोस्वामी कहते हैं यह शोक मोह और भय से मुक्त होना ये तो भागवत सुनने का गौण फल है, सेकेंडरी फल है। भागवत सुनने का प्राइमरी फल क्या है, मुख्य फल क्या है? तो कहते हैं परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते। भागवत सुनने से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण में भक्ति और पूर्ण प्रेम उत्पन्न हो सकता है। भागवत सुनने का प्राइमरी सबसे मुख्य फल यह है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो सकता है, भगवान के साथ प्रीति उत्पन्न कर सकते हैं। और भगवान के साथ प्रीति उत्पन्न करना यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। तो भगवान में प्रेम उत्पन्न करने वाला यह ग्रंथ हम प्रति रविवार को यहाँ पर सुन रहे हैं। इनके पीछे एकमात्र ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की कृपा है, तो उनकी कृपा का लाभ हमें पूर्ण लेना चाहिए, बिना सोए बिना आलस किए और मन लगाते हुए पूर्ण रूप से प्रभुपाद जी की इस कृपा का लाभ लेना चाहिए। कभी कभी होता है कुछ लोग शरीर से तो आ जाते हैं परंतु मन घर पे होता है, मन किसी फिल्म और सीरियल में होता है। इससे भी लाभ मिलेगा परंतु पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। पूर्ण लाभ लेने के लिए स्वस्थेन मनसा, अपने मन को स्वस्थ रखते हुए, मन को पूरा पूरा लगाते हुए यह भागवत ग्रंथ का श्रवण करना चाहिए। तो यहाँ पर हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अष्टम अध्याय की कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा भगवान के परम भक्त ध्रुव महाराज की है। गुरु नारद मुनि वन में मिले हैं। ध्रुव महाराज अपना घर छोड़कर निकल गए, नारद मुनि वन में मिले और नारद मुनि ने स्थान का निर्देश किया और उस स्थान में जाकर भगवान की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए यह भी नारद मुनि ने कह दिया। अंत में नारद मुनि ने कहा परिचर्या भगवतो यावती पूर्व सेविता ता मंत्र हृदये नैव प्रयुञ्ज्यान् मंत्र मूर्तये। हे ध्रुव, मधुवन में जाकर सबसे पहले भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करना। यदि भगवान का अर्च विग्रह प्रकट न मिले तो मन से भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करना और पूजा के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना। और यह पूजा, भगवान का ध्यान, भगवान का नाम, यह सब कुछ प्रेम से लेना, जबरदस्ती नहीं। एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम परिचर्यमाणो भगवान भक्ति मत परिचर्या। प्रेम के साथ, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करना और भगवान की भक्ति से निश्चित रूप से बहुत जल्द भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। और भगवान तुम्हारे सामने प्रकट होकर क्या करेंगे? तो कहते पुंसाम माई नाम सम्यक भजताम भाववर्धन। कहते हैं कि सम्यक भजताम, यदि कोई व्यक्ति भगवान की भली भांति पूरी पूरी भक्ति करता है तो माई नाम पुंसा निश्चित ही भगवान मनुष्य को भूयसा भक्ति योगे न भगवान उस भक्ति करने वाले की समस्त इच्छा पूरी करते हैं। तम निरंतर भावे न श्रेयो दिशति अभिमतम यद धर्मादिशु देहि नाम। धर्म आदिशु का अर्थ होता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो उसे भगवान सब कुछ देते हैं, धर्म देते हैं। धर्म का अर्थ है अपने परिवार के बीच में प्रेम प्रीति यह भी कृपा करते हैं। अर्थ का अर्थ होता है धन। यदि कोई कृष्ण की भक्ति करता है तो धन भी मिलता है। यदि धन चाहिए, नारद मुनि ध्रुव महाराज को कह रहे हैं, यदि धन चाहिए तो उस भगवान की सेवा करना, भक्ति करना। यदि परिवार के बीच में मान सम्मान चाहिए तो भी भगवान की भक्ति करना। काम चाहिए, यदि बहुत सुंदर पत्नी चाहिए तो भी भगवान की भक्ति करना। इस प्रकार से नारद मुनि ध्रुव महाराज को कह रहे हैं कुछ भी इच्छा हो ये भगवान पूर्ण करेंगे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करो, उनकी भक्ति करो। इस प्रकार से नारद मुनि ने कहा, परंतु ये पूर्ण उपदेश नहीं है। गुरु जो होते हैं वे अपने शिष्य को पूर्ण उपदेश करते हैं, और एक गुरु का अपने शिष्य को कहना कि तुम भगवान के पास जाओ और भगवान को प्रसन्न करो और भगवान से धन मांगना, ये उपदेश तो है परंतु पूर्ण उपदेश नहीं है। इसलिए नारद मुनि अपने उपदेश को अंतिम श्लोक में अपने उपदेश को पूर्ण कर रहे हैं, और इस श्लोक में नारद मुनि को नारद मुनि ध्रुव महाराज को एक इंडिकेशन दे रहे हैं। नारद मुनि कह रहे हैं कि ध्रुव यदि तुम तो जा रहे हो भगवान से कुछ लेने के लिए, परंतु भगवान की वास्तविक भक्ति तो यह है कि भगवान से कुछ न मांगा जाए। नारद मुनि कह रहे हैं विरक्त च इंद्रिय रतो भक्ति योगे न भूयसा। नारद मुनि कहते थे वस्तुतः हम सबको हमारी इंद्रियों को वश में करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और भगवान जब प्रसन्न हो जावे तम निरंतर भावे न भजेता द्वा विमुक्तये। यदि भगवान से कुछ मांगना है तो भगवान से मोक्ष मांगना चाहिए। नारद मुनि ध्रुव महाराज को कह रहे हैं भगवान से कोई राज्य या धन या संपत्ति या गाड़ी बंगला नहीं मांगना चाहिए। भगवान से यदि मांगना है तो विमुक्तये, भगवान मुझे इस संसार से मुक्त कर दो, यह चीज मांगनी चाहिए। वैसे तो ध्रुव महाराज मानने वाले नहीं है, क्योंकि वो तो निकले हैं वो राज्य प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा, परंतु फिर भी एक गुरु का यह कर्तव्य बनता है कि योग्य समय पर अपने शिष्य को यह शिक्षा दे। भले ध्रुव महाराज नहीं मानने वाले हैं, परंतु फिर भी नारद मुनि कह रहे हैं कि हम सबको भगवान से धन अर्थ काम इत्यादि नहीं मांगना चाहिए। भगवान से यदि मांगना है तो भगवान को कहना चाहिए हमें मोक्ष दीजिए, आपका धाम दीजिए। क्योंकि जब तक हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, हमारी मुक्ति नहीं होगी, हम भगवान के धाम में नहीं जाएंगे, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। यदि हम भगवान से धन मांग ले, गाड़ी मांग ले, बंगला मांग ले, अच्छी पत्नी मांग ले, और भगवान ये सब कुछ दे भी दे, फिर भी हम सुखी नहीं हो सकते। नारद मुनि का बहुत सुंदर सिद्धांत है, ध्रुव ऐसी वैसी चीज मत मांगना भगवान से। भगवान मुक्ति, भगवान का एक नाम है मुकुंद, और मुकुंद का अर्थ होता है मुक्ति ददाति इति मुकुंद। भगवान मुकुंद, भगवान कृष्ण मुक्ति भी दे सकते हैं। तो जो कृष्ण मुक्ति दे सकते हैं उसे साधारण चीज क्यों मांगना? और साधारण चीज में भी कितना भी धन मिल जाए, कितना भी सोना गाड़ी बंगला मिल जाए, फिर भी यदि कोई व्यक्ति इस संसार में रह रहा है वह सुखी नहीं हो सकता है। क्योंकि दुख का कारण, दुख का सबसे बड़ा कारण ही यह संसार है। जब तक इस संसार में हम हैं और भगवान के द्वारा हमें कुछ भी मिल जाए, इस संसार में जब तक है तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मामु पेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। हे अर्जुन, यह संसार दुखालय है, दुखों का सागर है। यह संसार मैंने दुख देने के लिए ही बनाया है। तो इस दुखालय संसार में व्यक्ति को कैसी भी वस्तु मिल जाए वह सुखी नहीं हो सकता है। आप देखोगे, कोई लड़का यदि स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ने वाले लड़के को पूछा जाए कि आप सुखी हो, तो लड़का कहेगा कि क्या सुखी हूं, रोज सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, चड्डी पहनकर स्कूल में आओ और यहां पर आकर 7 सब्जेक्ट के 7 टीचर 7 होमवर्क देती हैं, पूरा दिन होमवर्क करने में निकल जाता है, फिर ट्यूशन टीचर वो भी होमवर्क देती हैं, खेलने का समय नहीं और स्कूल में चड्डी पहनकर आना पड़ता है, मैं सुखी नहीं हूं। लेकिन जब कॉलेज में आ जाऊंगा, पीडीएर बंक मारूंगा, जब कॉलेज से भागूंगा तब सुखी हो जाऊंगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा तब सुखी हो जाऊंगा। और भगवान की कृपा से वह बालक कॉलेज में आ भी जाता है और कॉलेज में कुछ समय तक रहता है। फिर यदि कॉलेज स्टूडेंट को पूछा जाए, आप सुखी हो, जब स्कूल में पूछा था तो आप दुखी थे, अब कॉलेज में आ गए, अब सुखी हो गए, तो फिर कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का कहता है कि पूरा सुखी नहीं हूं। कारण यह है कि मेरे जो फ्रेंड है, मेरे क्लास में जो लड़के हैं, वो रिबोक और रिबोक के शूज पहनते हैं और मारुति SX4 और क्या क्या होंडा इत्यादि कार लेकर आते हैं। सारी लड़कियां उसके पीछे घूमती हैं, मेरे पास तो कोई आती नहीं, कोई गर्लफ्रेंड कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे और मैं भी इस प्रकार से शूज और कपड़े जींस इत्यादि पहनूंगा, गाड़ी में घूमूंगा, तब सुखी हो जाऊंगा, अभी ठीक नहीं। अब वो 5 साल मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद जब उसको धन धन भी मिल जाता है, सारी इच्छा पूरी होती जाती है, धन भी मिल जाता है, फिर उसे पूछा जाए अब आप सुखी हो गए, तब वो लड़का कहता है कि मेरे पास आज बहुत धन है, परंतु मैंने देखा है कि जब मैं पैसे लेकर घर पे जाता हूं तो लोग मेरी वाह करते हैं, मुझे पूछते हैं, लेकिन जिस दिन मंदी होती है और जिस दिन पैसे लेकर घर पे नहीं जाता हूं, घर वालों को जब पैसे नहीं देता हूं तो मुझे गाली देते हैं, ठीक से पूछते भी नहीं है, खाना भी ठीक से नहीं देते हैं। इसलिए धन तो है मेरे पास, परंतु मुझसे सच्चा प्रेम करने वाला कोई नहीं। सच्चे प्रेम करने वाली यदि कोई मिल जाए, कोई पत्नी अच्छी मिल जाए, तब सुखी हो जाऊंगा। अब 2-3 साल पत्नी को ढूंढता है, एंगेजमेंट होता है, विवाह कर लेता है, और विवाह करने के बाद तो क्या हालत है पूछ ही लीजिए आप, जिसने विवाह किया है कितने सुखी है। विवाहित पत्नी और पति दोनों कितने सुखी है पूछ लीजिए। दुखी के दुखी रहते हैं। कारण यह है, इच्छा पूरी होती है। स्कूल में थे तो कॉलेज की इच्छा थी, कॉलेज में आ गए, इच्छा पूरी हुई। कॉलेज में थे तो धन की इच्छा हुई, वह भी पूरी हुई, लेकिन सुख नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम जिस जगत में रह रहे हैं, यह जगत ही दुखालय है, और दुखालय जगत में कुछ भी मिल जाए हम सुखी नहीं हो सकते। जैसे कोई व्यक्ति कश्मीर में जाकर कहे कि अरे यार यहाँ तो बहुत ठंड है, ठंड खाने के लिए तो कश्मीर गए थे, अब कश्मीर में जाकर कोई कहे कि यहाँ पर बहुत ठंड लग रही है, तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा। दुखालय जगत में रहकर कोई कहे कि मैं बहुत दुखी हूं, तो दुखी है सब लोग यही है। दुखालय जगत में रहकर कोई कहे कि अरे मुझे बहुत दुख है, अपना गाना गाते हैं मैं इतना दुखी हूं, ये बड़ी बात, ये नई बात थोड़ी ना है। समुन्दर के बीच में व्यक्ति खड़ा रहकर कहे कि अरे बाप रे बाप, यहाँ तो बहुत पानी है, बहुत पानी है, रोज सुबह कहने लगे बहुत पानी, अरे पानी के बीच में रहता है तो पानी होगा ना कि पत्थर होगा, तो दुखालय जगत में रहकर दुख ही मिलेंगे और क्या मिलेंगे। कितनी भी बड़ी चीज मिल जाए हम दुखी के दुखी, क्योंकि दुख का कारण, दुख का सबसे बड़ा कारण यह जगत है। जब तक इस दुखालय, इस भौतिक जगत से हम बाहर निकलकर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान के धाम में नहीं जाएंगे, तब तक हम सुखी नहीं होंगे। इसलिए इस संसार में रहकर किसी व्यक्ति के पास और भगवान के पास और देवी देवताओं के पास यह कामना करना कि मुझे धन मिल जाए, बच्चे मिल जाए, पत्नी मिले, ये गलत कामना है। ये तो सबसे बड़ा मूर्ख है। देवी देवताओं के पास या भगवान के पास कोई भौतिक चीज मांगता है, ये सबसे बड़ा मूर्ख। आप कहोगे मूर्ख क्यों कह रहे हैं, तो तुम्हें मैं आपको एक दृष्टांत दूं। मान लीजिए एक जेल है, उम्र कैद की सजा उस जेल में सब लोग भोगत रहे हैं, सेंट्रल जेल। वैसे तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन टीवी में देखा होगा सब लोगों ने। सेंट्रल जेल में बहुत उम्र कैद की सजा भोगतने वाले होते हैं। तो मान लो ऐसा एक दिन हो जाए, हो गया, मनमोहन सिंह खुश हो गया, आज तो बिंदास खुश हो गया, क्योंकि उसका सालगिरह थी या जेल का 100 साल पूरा हुआ। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि आज मैं उस सेंट्रल जेल में जाऊंगा और उस जेल में रहने वाले व्यक्ति लोगों की जो इच्छा है मैं पूरी पूर्ण करूंगा, जिसकी जिसकी जो इच्छा है मैं पूर्ण करूंगा। सब लोग खुश हो गए और बहुत बड़ा पंडाल, जेल में भी पंडाल होता है, आपने देखा होगा, बहुत बड़ा पंडाल लगा। ये वड़ा प्रधान आए और जेल के जितने भी उम्र कैद की सजा भुगतने वाले कैदी थे सबको लाइन में खड़ा रखा गया। पहला व्यक्ति आया प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं यहाँ पर आपकी सभी इच्छा पूर्ण करने के लिए आया हूँ, आपको जो चाहिए वो मांग लो। तो पहले कैदी ने कहा कि प्रभु आप सब इच्छा पूरी करोगे? कहा हाँ, इसलिए तो आया हूँ। प्रभु आप एक काम करो, ये जेल में बहुत मच्छर काटते हैं, बहुत मच्छर इतने काटते हैं, बहुत परेशान कर देते हैं, मच्छर कुछ न काटे ऐसी व्यवस्था कर दो। प्राइम मिनिस्टर ने कहा ठीक है, गुड नाइट चाहिए, कैस्पर चाहिए, कछुआ चाप चाहिए, क्या चाहिए और कितना चाहिए? दे दिया, इसका गोडाउन भर दो, इसके जीवन भर इसको मच्छर नहीं काटना चाहिए। ओके, पहला व्यक्ति पास। दूसरा व्यक्ति आया, आपको क्या चाहिए भाई? दूसरे ने कहा प्रभु 15 साल से इस जेल में आया हूं, 15 साल से सुबह दोपहर शाम केवल खिचड़ी खा रहा हूं, 15 साल से खिचड़ी के अलावा कुछ नहीं देखा है, कुछ खाने का कुछ प्रबंध कर दो ना, कुछ पाव भाजी मिल जाती, पिज्जा मिल जाता, रसगुल्ला मिल जाता तो आनंद आ जाता, ऐसी कुछ व्यवस्था कर दो। प्राइम मिनिस्टर ने कहा ठीक है, एक होटल ही एक जेल में बना दो और इस व्यक्ति को जब खाना है उस होटल में भेज देना। ओके, दूसरे को पास। तीसरा व्यक्ति आया, आपको क्या चाहिए? तीसरे ने कहा देखो जब से यहां आया हूं तब से पैसे को नहीं देखा है, और पैसे के अलावा कौन सुखी होता है, मुझे धन चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कितना चाहिए? उसने कहा 10 लाख मिल जावे तो काम बन जावे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा 10 नहीं, इसके बैंक बैलेंस में 20 लाख रुपया जमा करा दो। खुश हो गया, अरे 20 लाख बैंक बैलेंस। कितने व्यक्ति हुए? 3 हुए ना, चलो और भी 2 को बढ़ाते हैं। चौथा व्यक्ति आया, चौथे को पूछा भाई आपको क्या चाहिए? उसने कहा कि देखो यहाँ जेल में काम करा करा कर थकवा देते हैं, बहुत पसीना होता है, और ये जितने भी साले जितने भी मेरे साथ है बहुत बदबू मारते हैं। सेकंड क्लास के ट्रेन में आप आओगे तो पता लगेगा, और जिसकी हाइट कम है वो तो बेचारा, और गर्मी की सीजन में तो नरक का अनुभव होता है। और राम सिंह प्रभु जैसे को तो अनुभव हो गया होगा। का ये सब लोग बदबू मार रहे हैं, कुछ डिओड्रेंट का, कुछ स्प्रे का, कुछ परफ्यूम का इंतजाम हो जाता तो ठीक हो जाता। प्राइम मिनिस्टर ने कहा लोमानी है, ये है, वो है, सब कुछ इसके नाम पे कर दो, सब कुछ दे दो इसको। पास निकला। अब चौथा व्यक्ति आया, 3 हो गया, पांचवा आया, ठीक है पांचवा व्यक्ति आया है। पांचवे व्यक्ति को पूछा बोलो आपको क्या चाहिए? पांचवे ने कहा मैं जो मांगूंगा आप दे दोगे? उसने कहा हाँ इसलिए तो दिया हूँ, अब तक जितने आए सबको जो मांगे वो दिया है और तुम्हें भी मैं देने वाला। अच्छा जो मांगूंगा वो दे दोगे? प्रायमेश ने कहा तो एक आप एक काम करो, मुझे इस जेल से ही बाहर निकाल दो। अब बताइए पांच में से बुद्धिमान कौन है, खिचड़ी वो होटल मांगने वाला, धन मांगने वाला, तो डिओडेंट मांगने वाला, तो फिर जेल से बाहर निकलने वाला। क्यों? क्योंकि जब तक व्यक्ति जेल में है उसके बैंक में 20 लाख आ गए तो वो यूज कहां करेगा। जब तक व्यक्ति जेल में है उसे मान लीजिए पाव भाजी या पिज्जा भी दिया जाए, लेकिन खाते खाते यह विचार आ गया तो कि उम्र कैद यहां भुगतना है, तो वह सुख प्राप्त कर पाएगा? जब तक व्यक्ति जेल में है तब तक वह सुखी नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार भक्तों, हम सब लोग भगवान की बनाई हुई इस पृथ्वी रूपी जेल में रह रहे हैं, और जब तक इस पृथ्वी रूपी जेल में हम रह रहे हैं, इस जेल में हमें कितना भी धन मिल जाए, कितना भी गाड़ी बंगला मिल जाए, कितना भी परफ्यूम मिल जाए, कितनी भी होटल मिल जाए, जब तक इस जेल में है तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए यदि भगवान से मांगना है तो ये मूर्खों की तरह प्राइम मिनिस्टर के पास से जैसा मांगा वैसा मत मांगिए कि मुझे धन दीजिए। आपने ही कहा कि बुद्धिमान वो नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति इस जेल से बाहर निकलना चाहता है, अर्थात भगवान से यदि मांगना है तो कहना चाहिए मुझे इस भौतिक जगत से मुक्त कर दो और आपके धाम में बुला दो। हरे कृष्णा हरे। तो नारद मुनि ने अंत में ध्रुव महाराज को कहा कि ध्रुव भगवान से निष्काम भाव रखना चाहिए, भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करनी चाहिए, और जब भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करेंगे तभी हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। जितने भी लोग भुक्ति मुक्ति चाहते हैं सब लोग अशांत है, दुखी है, परंतु कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त शांत होते हैं, दुखी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वह निष्काम होते हैं, उसकी कोई कामना नहीं होती। इसलिए कृष्ण भक्त बहुत सुखी होते हैं। कितने लोग सुखी हैं बताइए? कोई नहीं है। कृष्ण भक्त है फिर भी नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूं? सत्य है। हम सब लोग माला जपते हैं, मंदिर जाते हैं, भक्ति करते हैं, अपने आप को भक्त भी मानते हैं, फिर भी हम सुखी नहीं है। और शास्त्र में तो कहा है कोई एक बार भी भगवान का नाम लेता है तो सुखी हो जाता है। हम इतनी इतनी भक्ति करते हैं फिर भी क्यों सुखी नहीं है? चैतन्य महाप्रभु के अनुसार वह भक्त सुखी हो सकता है जो निष्काम है, जिसकी कोई कामना नहीं है। हम भक्ति तो करते हैं परंतु हजारों कामनाएं हमारी कि ये साड़ी मिल जाती तो अच्छा था, ये गहना मिल जाता तो अच्छा था, इतना धन मिल जाता तो अच्छा था। भक्ति कर रहे हैं परंतु कामनाओं के साथ भक्ति कर रहे हैं, इसलिए सुख नहीं है। सुख कब होगा? कृष्ण भक्त निष्काम, जब निष्काम बनेंगे अतएव शांत, तब शांत होंगे, तब सुख मिलेगा। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि भगवान से कोई कामना नहीं रखनी चाहिए, निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ध्रुव महाराज तो कहां मानने वाले थे, परंतु गुरु की एक गुरु का एक कर्तव्य है, नारद मुनि ने वह कर्तव्य निभाया। जब नारद मुनि ने यह उपदेश समाप्त किया, मैत्री जी कहते हैं इति उक्तस्तम परिक्रम्य प्रणम्य च निपार्वक ययो मधुवनम पुण्यम हरेश चरण चर्चितम। इति इस प्रकार से नारद मुनि के मुख से उपदेश सुनकर ध्रुव महाराज ने कहा ठीक है बस प्रभु अब मुझे सब पता चल गया। इस प्रकार से ध्रुव महाराज ने सबसे पहले नारद मुनि की परिक्रमा की, नारद मुनि के आजू बाजू में तीन परिक्रमा की और परिक्रमा करके प्रणम्य नारद मुनि को प्रणाम किया। बहुत अच्छे शिष्य है। वास्तव में शिष्य का कर्तव्य होता है गुरु जब आए तब प्रणाम करें। नारद मुनि जब आए तब ध्रुव महाराज ने प्रणाम नहीं किया, अब जा रहे हैं तब प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रणाम कर रहे हैं। आज के इस समय में प्रणाम कौन करना चाहता है? प्रणाम करने में लगता है नानी मर जाती है, प्रणाम करने में भी कितनी आलस करते हैं। वास्तव में प्रणाम करना एक बहुत बड़ी चीज है। प्रणाम से हम दूसरे सामने वाले व्यक्ति को जिसको प्रणाम कर रहे हैं उसे खरीद सकते हैं, केवल प्रणाम करने से। परंतु इतने आलसी हो चुके हैं। और कुछ कुछ लोग तो प्रणाम करते हैं, परंतु मैं मंदिर में बहुत बार देखता हूं कुछ लोग भगवान को प्रणाम करते हैं, परंतु कैसा करते हैं? जैसे प्रणाम करने में कुछ उसका पैसा खर्च हो रहा हो। कुछ लोगों तो मैंने देखा है पैंट शर्ट पहनकर इन शर्ट करके आते हैं, बहुत सुंदर स्त्री टाइट कपड़े होते हैं, और उसका इरादा होता है कि यदि प्रणाम करूंगा तो ये कपड़े खराब हो जाएंगे, इसलिए प्रणाम तो करते हैं, अष्टांग प्रणाम करते हैं। परंतु कैसे करते पता है? मैंने देखा है कि वो लोग प्रणाम करते हैं पूरा सो जाते हैं, लेकिन उसका पूरा भार अपने पैर के ऊपर रखते हैं, अंगूठे के बल के ऊपर, और जमीन में उसका ये घुटन और उसका ये शर्ट वो कुछ स्पर्श नहीं होता है। एक और घुटन है और एक और ये हाथ है, ऐसे हाथ रखते हैं, हाथ और घुटन उसके बीच में जमीन से कुछ स्पर्श नहीं होता है, और फटाफट भगवान को प्रणाम करके खड़े हो जाते हैं ताकि शर्ट और पैंट खराब ना हो। ऐसा प्रणाम नहीं होना चाहिए। प्रणाम का अर्थ दंडवत का अर्थ होता है, जैसे डंडा खड़ा है इस दीवार के सहारे और कोई बच्चा उसे धक्का मार दे और डंडा गिर जाए बिना सहारे के, उस प्रकार प्रणाम करना चाहिए। और ऐसे प्रणाम को दंडवत कहते हैं, दंड के समान गिरना, इसे दंडवत कहते हैं। फिर इसमें यह नहीं देखना चाहिए कि मेरा पैंट बिगड़ रहा है, शर्ट बिगड़ रहा है, कभी नहीं। तो प्रणाम करना एक बहुत बड़ी चीज है। प्रणाम करने से हम खरीद सकते हैं। और महाभारत में तो कहा गया है कि 10 अश्वमेघी पुनरेति जन्म, 10 अश्वमेघ करने वाला फिर से इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, फिर से उसे आना पड़ता है दुख भुगतने के लिए। अश्वमेघ यज्ञ जो बहुत मुश्किल है, कलयुग में इम्पॉसिबल है, ऐसे 10 अश्वमेघ यज्ञ कर ले फिर भी यह माता के गर्भ में उसे आना पड़ेगा। परंतु एक बार भी कोई भगवान के चरण में प्रणाम कर देता है, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, वे फिर कभी भी इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता। भगवान को प्रणाम करने में इतना इतनी महिमा है, एक बार कृष्ण को, और वह भी जबरदस्ती, किसी ने गिरा भी दिया कृष्ण के सामने तो कृष्ण यही मानते हैं कि इसने मुझे प्रणाम किया। तो ध्रुव महाराज ने नारद मुनि को प्रणाम किया और प्रणाम करके ययो मधुवनम पुण्य, वे कहां गए? मधुवन में गए। वृंदावन में 12 वन है, उनमें से एक वन है मधुवन। तो उस मधुवन में, जिस नारद मुनि ने जो दिशा बताई थी उस दिशा के अनुसार मधुवन में ध्रुव महाराज पहुंच गए। मैत्रेय मुनि मधुवन की महिमा बताते हैं, यह मधुवन कैसा है? कहते हरेश चरण चर्चितम, यह मधुवन यह वृंदावन भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्ण के चरणों से आप्लावित है। वृंदावन में एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर कृष्ण के चरण न गिरे। यह कह रहे हैं हरि चरण चर्चितम, हरि के चरणों से उपलब्ध हो वृंदावन में गए। वास्तव में भगवान वृंदावन की गली गली कोने कोने में अपने चरण को रखे हैं। और भगवान जब वृंदावन में चलते थे तो हमारी तरह जूता और चप्पल पहनकर नहीं चलते थे। भगवान वृंदावन को इतना पवित्र मानते थे, इतना पवित्र मानते थे। वैसे तो भगवान पवित्र में से भी पवित्र है, पवित्रम परमम भवान। अर्जुन ने गीता में कहा कि हे कृष्ण, आप सब लोगों से इस संसार में सभी वस्तु के पवित्र के पवित्र को भी पवित्र करने वाले आप हो। पर ऐसे पवित्र भगवान वृंदावन को इतना पवित्र समझते हैं कि उसके ऊपर जूता पहनकर भी चरण नहीं रखते, नंगे पांव वृंदावन में चलते हैं। और वृंदावन में एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर कृष्ण के चरण न गिरे। और आज भी कृष्ण वृंदावन और मथुरा में आज भी विराजमान है। भगवान एक सेकंड के लिए भी यह मधुवन और वृंदावन को छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं। वृंदावनम परित्यज्यं पादमेकं न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर भगवान एक सेकंड के लिए भी बाहर नहीं जाते हैं। तो फिर आप प्रश्न करोगे अक्रूर जी तो लेकर चले गए तो क्या बाहर नहीं गए। कथा जो जानते हैं दशम स्कंद की, कंस ने अक्रूर जी को भेजा था और कृष्ण और बलराम को लेकर अक्रूर जी मथुरा चले गए तो कृष्ण तो नहीं रहे। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कथा है, लीला है। बताऊं आपको, सुनना है नहीं सुनना है? सुनना है आपको, सुनना। एक बहुत बड़ी रहस्य की बात कर रहा हूं क्योंकि आप सब लोग भक्त हो और भक्ति में बहुत आगे हो, इसलिए ये नए भक्तों के बीच में ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए, परंतु आप सब बहुत भक्ति में आगे हो। गोपाल चंपू नामक ग्रंथ जो जीव गोस्वामी ने लिखा है और कवि कर्णपुर जी ने आनंद वृंदावन चंपू नामक ग्रंथ अपनी टीका लिखी हुई है और भागवत के मर्मज्ञ श्रीधर स्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है और ये सत्य बात है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज से 5000 वर्ष पूर्व हुआ। कहां पर हुआ? मथुरा में कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से। परंतु नई बात नहीं है, एक सत्य, सनातन सत्य तथ्य मैं आपको बताऊं। जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से हुआ, उसी समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म यशोदा जी के गर्भ से भी हुआ। और देवकी जी के गर्भ से जो भगवान जन्म लिए, तुरंत चतुर्भुज रूप में जन्म लिए, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथों में थी। क्यों? क्योंकि देवकी और वसुदेव अगले जन्म में द्रोण और धरा थे और कश्यप और दीदी थी, अदिति थी, और उन्होंने भगवान के विष्णु रूप की आराधना की थी। भगवान का जो विष्णु रूप है उनकी तपस्या की थी और वह उनके सामने प्रकट हुए थे और भगवान विष्णु जैसा पुत्र उन्होंने मांगा। तो भगवान श्री कृष्ण जब देवकी जी से गर्भ जन्म लिए तो भगवान विष्णु उनके गर्भ से प्रकट हुए, परंतु नंद बाबा और वसुदेव, क्षमा कीजिए, नंद बाबा और यशोदा मैया, यह दोनों ने अपने अगले जन्म में वात्सल्य भाव में, माधुर्य में भगवान श्री कृष्ण की आराधना की थी, इसलिए उनके गर्भ से नित्य गोलोक धाम में रहने वाले, गोलोक धाम में नित्य रहने वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्म उनके गर्भ से हुआ। और जब वसुदेव जी कृष्ण को मथुरा से वृंदावन में लेकर गए, गोकुल में लेकर गए, तो ये जो विष्णु कृष्ण थे, विष्णु फॉर्म वाले कृष्ण थे, उसको वहां पर छोड़ दिया और वो माया, योग माया को लेकर आ गए। वसुदेव जी तब वो कृष्ण को जो गोलोक धाम के गोलोकवासी नित्य कृष्ण है बजेंद्र नंदन, वो कृष्ण को नहीं देख सके, परंतु वहां पर दो कृष्ण हो चुके थे, एक विष्णु फॉर्म कृष्ण और एक बजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक से आए थे वह कृष्ण। और जब वह दोनों कृष्ण जब वहां पर हुए तो दोनों कृष्ण मिल गए और एक हो गए। इसलिए आचार्यगण अपनी टीका में लिखते हैं, इस बात को क्लियर करते हुए, कृष्ण ने जन्म से ही असुरों का वध करना प्रारंभ कर दिया। पूतना को मारा, अघासुर बकासुर सफाया करते गए। ये जितना भी वध किया कृष्ण ने नहीं किया, कृष्ण कभी किसी को मारते नहीं है, परंतु कृष्ण में जो विष्णु फॉर्म था वो भगवान विष्णु कृष्ण ने सबका वध किया। और जब अक्रूर जी कृष्ण को लेने के लिए आए, अक्रूर जी के रथ में भी कृष्ण बैठ गए। रथ जब आगे बहुत आगे चल गया तब कृष्ण ने कहा, अक्रूर जी मुझे यमुना में स्नान करना है, अंत में एक बार मुझे यमुना में स्नान करने दीजिए। और कृष्ण जब यमुना में स्नान करने गए तो कृष्ण जो बजेंद्र नंदन जो नित्य वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं वह कृष्ण यमुना में ही रह गए। और जो विष्णु फॉर्म, क्योंकि मारना था विष्णु फॉर्म ही सबको मार देते, और वहां पर मारना था कंस को, चारुर मुष्टि कुबलिया पीड़ ये सबका सफाया करना था, इसलिए वो बाहर आए। लीला के द्वारा भागवत में भी यह क्लियर है, अक्रूर जी भी उस नदी में स्नान करने गए और अक्रूर जी ने अद्भुत दृश्य देखा कि यमुना के अंदर स्नान करने गए तो अंदर भी कृष्ण, और बाहर आकर देखा तो कपड़े वपड़े पहनकर रथ में भी बैठे थे। अक्रूर जी भी अचंभे में पड़ गए, अंदर भी कृष्ण है बाहर भी कृष्ण है, लेकिन अक्रूर जी ने अपनी बुद्धि नहीं चलाई, छोड़ो ये कृष्ण है ऐश्वर्यशाली हो सकते हैं, परंतु था क्या, जो मथुरा के कृष्ण थे वो रथ पर बैठ गए थे और जो वृंदावन को एक क्षण भी छोड़कर नहीं जाते हैं वो यमुना में ही बैठ गए और अक्रूर जी के साथ वो कृष्ण चले गए। ये बिल्कुल तथ्य है। इसमें भी बहुत 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 कथाएं हैं लेकिन मैं इस बात को सिद्ध करने के लिए यह कथा कहा कि वृंदावन को छोड़कर भगवान एक क्षण भी बाहर नहीं जाते हैं। तो भगवान नहीं गए, मथुरा में गए लेकिन वो विष्णु फॉर्म कृष्ण। तो मैत्र जी कहते हैं कि ध्रुव महाराज मधुवन में गए जहां पर भगवान श्री कृष्ण के चरण नित्य पड़े रहते हैं। और तपोवनम गते तस्मिन प्रविष्टो अंतपुर मुनि। मैत्र जी कहते हैं जब ध्रुव महाराज मधुवन में चले गए तो नारद मुनि ध्रुव महाराज के पिता उत्तानपाद के पास गए और अंतपुर उत्तानपाद के महल में पहुंच गए। जब उत्तानपाद के वहां पर पहुंचे तो अरहिता अरहणको राज्ञा सुखासीन वाचतम। राजा उत्तानपाद ने नारद मुनि को सुख आसीन सुखमय आसन के ऊपर बिठाया। राजा उत्तानपाद के पास ऐसा आसन था कि दुखी से दुखी व्यक्ति भी उस पर बैठे तो सुखी हो जाए। आप देखिए श्लोक में लिखा है सुखासीन, सुख आसीन, आसीन का अर्थ होता है आसन बिठाना और सुख का अर्थ आप जानते ही। ऐसा आसन था कि व्यक्ति को सुख मिले। आज इस संसार में अच्छे से अच्छा सोफा सेट आपके घर पर हो लेकिन व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। सोफा सेट में बैठकर ऐसी शुरू है लेकिन हृदय से अंदर से बिल्कुल जलता रहता है व्यक्ति। परंतु पहले के राजा महाराजाओं के पास ये शक्ति थी। सुखासीन के ऊपर बिठाया और उनकी उनका स्वागत किया, जल दिया, भोजन कराया। तब जब यह सब स्वागत किया राजा ने तो मैत्र जी यहां पर नारद मुनि को मुनि कह रहे हैं। नारद जी जो है ये मुनि है। मुनि का अर्थ मैंने शुक्रवार को कहा था। मुनि का अर्थ होता है श्रीपाद शंकराचार्य मुनि का अर्थ करते हैं मुनय मननशीला। मुनि का अर्थ होता है जो मनन करे। मनन का जानते हैं मन में एक ही चीज को रटा करे, मनन करे। तो मनन करने वाले को मुनि कहते हैं। तो मनन तो सब लोग करते हैं। ये भी मनन करता होगा कि स्कूल में क्या होमवर्क दिया है, क्या पढ़ना है, पिताजी क्या कहेंगे, ये बालक भी मनन करता है। बिजनेस करने वाले अपने बिजनेस का मनन करता है, आज इतना सेल करना है, आज इतना बाइंग करना है। दुकान वाला अपने दुकान का मनन करता होगा कि आज इतना कपड़ा बेचना है, आज इतना ये करना है, आज लिनन का कपड़ा बहुत चल रहा है तो वह लाना है। क्यों राम सिंह को मनन सब लोग करते हैं परंतु भगवान का मनन न करते हुए धन का मनन करे, अपने बिजनेस का मनन करे, उसे मुनि नहीं कहा जाता है, उसे तो मुनिम कहा जाता है। मुनिम नाम सुना होगा जो बड़े सेठ के वहां हिसाब किताब रखता है उसे मुनिम कहते हैं। मुनि तो उसे कहा जाता है जो नित्य निरंतर भगवान के नाम का और भगवान की लीला का मनन करे, उसे मुनि कहते हैं। तो नारद मुनि उनमें से थे जो नित्य भगवान का स्मरण करते थे। ऐसे नारद मुनि जब उत्तानपाद राजा के पास बैठे तो नारद मुनि को ऐसे तो सब कुछ पता था लेकिन देखिए नारद मुनि क्या कौतुक कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात आ रही है, बहुत हंसी भी आती है यह सब सुनकर। नारद उवाचर, नारद मुनि बैठे आसन पर और राजा उत्तानपाद को कहा, वास्तव में जब से ध्रुव घर छोड़कर चला गया था उस दिन से ध्रुव के पिता उत्तानपाद बहुत दुखी थे, बहुत दुखी कि छोटे से बालक को मैंने घर छोड़कर बाहर निकाल दिया। तो दुखी थे तो नारद मुनि ने राजा उत्तानपाद को कहा, क्या कहा? कहा राजन किम ध्यायसे दीर्घम मुखेन परिशुष्यता किम वा न रिष्यते कामो धर्म वार्तेन संयुत। हे राजन तुम्हारा मुख देखकर लगता है कि दीर्घ काल से बहुत दीर्घ बहुत लंबे काल से परिशुष्यता तुम दुखी हो। तुम्हारा मुंह देखकर लगता है कि तुम दुखी हो और ये दुख भी आजकल का नहीं है, बहुत समय का दुख है। क्या कुछ प्रॉब्लम है? वास्तव में इस संसार में व्यक्ति का मुख देखकर पता लग जाता है कि यह व्यक्ति कितना दुखी है और कितना सुखी है। तो मुख देखकर, और प्राय संसार में सबका मुख चढ़ा हुआ ही होता है, किसी के मुख पर हंसी और प्रसन्नता नहीं मिलती। स्टूडियो में फोटो खींचने वाले को 15 बार कहना पड़ता है कि स्माइल स्माइल प्लीज, क्योंकि निरंतर स्माइल तो है ही नहीं मुख पर। कम से कम अंतिम क्षण पर फ्लैश होने पर एक बार स्माइल दे देवे तो फोटो में एक बार स्माइल आ जाए, लेकिन इतना कहने पर भी वो फोटो में स्माइल नहीं आती है। व्यक्ति इतना गंभीर हो जाता है, लगता है पूरा संसार का भार मनमोहन सिंह का भाई ही आकर बैठ गया है, पूरा संसार का भार इसी व्यक्ति के ऊपर है। इतना गंभीर मुद्रा में लोग रहते हैं और गंभीर ही रहेंगे, क्योंकि भागवत सुनते नहीं है, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, क्या करेंगे, दुखी रहेंगे। अरे सुखी होना है तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और माया में यदि रहना है तो माया दास उदास, कृष्णदास बिंदास। कृष्णदास बिंदास होते हैं, उसको कोई दुख नहीं होता है। तो फेस इज मिरर ऑफ हार्ट, फेस जो है ये हार्ट हृदय की बात बता देते हैं ये कितना दुखी है। तो देखिए नारद मुनि कह रहे हैं कि हे राजन, आपके आपके मुख को देखकर लग रहा है कि आप बहुत दिन से दुखी हो। किम वान रिष्यते कामो, क्या धन की कुछ कमी हो गई है, क्या कुछ पति पत्नी में झगड़ा हो गया है? क्या कुछ प्रॉब्लम है, इस प्रकार से पूछे। धर्म अर्थ और काम, इसके बारे में उन्होंने पूछा कि क्या दान देने के लिए धन नहीं बचा है। नारद मुनि ने यह नहीं पूछा कि आपके मुक्ति के रास्ते में कुछ तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है। देखिए श्लोक में यही लिखा है, धर्म अर्थ और काम, क्या धर्म की धर्म के बारे में कुछ प्रॉब्लम है, क्या अर्थ धन के बारे में प्रॉब्लम है, या क्या काम के बारे में प्रॉब्लम है, मुक्ति के बारे में नहीं पूछा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि नारद मुनि ने मुक्ति के बारे में इसलिए नहीं पूछा क्योंकि ये राजा बहुत भोगी थे, और भोगी लोगों को मुक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। भोगी लोगों को तो मैं किस प्रकार से धन को भोगू, किस प्रकार से पत्नी को भोगू, किस प्रकार से संसार को भोगू, इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। अच्छे से अच्छी होटल कहां पर है जहां पर अच्छा खाना खाया जाए, रविवार को तो होटल में ही जाना है। अच्छे से अच्छा फिल्म कहां पर है, कहां पर लगा हुआ है, बस इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, मुक्ति के बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए नारद मुनि ने मुक्ति के बारे में नहीं पूछा, पूछा कि क्या धन की कोई कमी है। जब इस प्रकार से नारद मुनि ने कहा क्या प्रॉब्लम है आप बताइए, तब राजा ने कहा, राजा उत्तानपाद ने कहा, बहुत शोक करते हुए दुखी होकर राजा उत्तानपाद ने कहा, सुतो में बालको ब्रह्मन स्त्रेणे ना करुणात्मना निर्वासित पंच वर्ष सह मात्रा महान कर। हे ब्रह्मन, नारद मुनि को ब्रह्मन कह रहे हैं, हे ब्रह्मन बहुत बड़ा दुख है। क्या दुख है? सुतो में निवर्सित, मैंने मेरे पुत्रों को घर से भगा दिया, ये सबसे बड़ा दुख। निवर्सितो, घर से निकाल दिया मैंने, और केवल सूत, केवल पुत्र को नहीं, साथ में मात्रा, साथ में उनकी माता को भी घर से भगा दिया। मैं पति होकर भी पत्नी और बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया, ये बहुत बड़ा दुख मुझे सता रहा है, बहुत बड़ा दुख। वास्तव में मनु संहिता नामक एक संहिता है, मनु संहिता में लिखा है कि मनुष्य के कर्तव्य क्या है। तो मनुष्य के कर्तव्य में मनु संहिता में लिखा है कि किसी भी पति को अपने पुत्र और अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्थात हमारी भाषा में किसी भी पति को अपनी पत्नी को डाइवोर्स नहीं देना चाहिए। पति का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी का और अपने पुत्र का भरण पोषण करे, मेहनत करके पत्नी और पुत्र का भरण पोषण करे, कभी भी उन्हें त्यागना नहीं चाहिए। परंतु मनु संहिता में बाद में ही यह भी लिखा है कि यदि पत्नी और पुत्र पति की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, या पति यदि गलत है तो शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो उसे त्याग सकते हैं। शास्त्र में क्या सब कुछ लिखा है, यदि वे शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो वो त्याज्य है, परंतु शास्त्र अनुमोदित शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हैं, भक्ति करते हैं, ऐसे व्यक्ति को त्यागना ये तो महापाप, सबसे बड़ा पाप। तो मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। पाप क्या किया है? मैंने डाइवोर्स दे दिया। ये हुआ ना हमारी भाषा में निवर्सित का अर्थ डाइवोर्स है। निवर्सित का अर्थ है छोड़ दिया, उसे घर से निकाल दिया, इसलिए मैं दुखी हूं। तो नारद मुनि ने कहा कि उसमें क्या दुख की क्या बात है, लड़का है, अपना कमाकर धन संपत्ति कमाकर अपना जीवन बिता लेगा। उत्तानपाद ने कहा नहीं, पंचवर्ष श्लोक में उत्तानपाद कहते नहीं, पंचवर्ष 5 साल का था केवल, पर बेचारा कितना दुखी होता होगा, 5 साल का बालक क्या कर सकता है। तो नारद मुनि तो सब कुछ जानते थे, लेकिन देखो पूछ रहे हैं, लगता है तो फिर वो बालक पागल होगा, वो बालक में कुछ गड़बड़ होगी, उसका अंग ठीक नहीं होगा, या पांव से लकवा मार दिया होगा, या आंख ठीक नहीं होगी, या जन्मजात ही कुछ पागल बालक पैदा हुआ होगा, तो ही माता पिता छोड़ देते हैं, अच्छे लड़के को थोड़ी ना छोड़ेंगे। संसार में हम देखते हैं जिसका लड़का हैंडीकेप होता है, कुछ शरीर ठीक से नहीं होता है, तो उसे छोड़ देते हैं। तो नारद ने कहा कि कुछ ऐसा ही आपका लड़का होगा। उत्तानपाद ने कहा नहीं, महान कवि, साधारण पुत्र नहीं था ध्रुव, मेरा बालक ध्रुव महान कवि। कवि का अर्थ होता है कवय, अंतदर्शिन। कवि का अर्थ होता है विद्वान, पंडित था वो, साधारण नहीं था, दिखने में भी सुंदर था और ज्ञान की दृष्टि में भी बहुत उच्च स्थिति का था। ऐसे लड़के को मैंने घर से बाहर निकाल दिया। नारद जी अप्यानाथम वने ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, ब्रह्मन कह रहे हैं। अगले श्लोक में भी नारद मुनि को ब्रह्मन कहते हैं, यह श्लोक में भी ब्रह्मन, हे ब्रह्मन। अप्यनाथम वने ब्रह्मन, अब वन में चला गया है, न जाने वन में मैं कहां ढूंढूं उसे, और वन में बड़े बड़े हिंसक प्राणी रहते हैं, और मेरा बालक कोमल एक छोटा सा शरीर है उसका, उसको भेड़िए खा गए होंगे, क्या हुआ होगा, मुझे इसकी चिंता सता रही। बहुत सुंदर उसका मुख होगा, उसके मुख कमल में भोजन मिलता होगा या नहीं मिलता होगा, वो भूखे मर रहा होगा, क्या हो रहा होगा, हो रहा होगा उसका, ये सोचकर मैं चिंतित। इस घोर जंगल में, इतने बड़े जंगल में वे कहां घूम रहा होगा। अब उत्तानपाद नारद मुनि को ब्राह्मण कह रहे हैं, ये ब्राह्मण शब्द का तात्पर्य है, जब कोई व्यक्ति किसी को संबोधन देता है तो उसमें कुछ बात छिपी हुई होती है। मान लीजिए हम और आप, मैं आपको प्रवचन सुना रहा हूँ 1 घंटे से, तो 1 घंटे से प्रवचन सुना रहा हूँ, तो मैं आपको सुना रहा हूँ, आपका नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सुनने के लिए बैठे हो, मैं बोलने के लिए बैठा हूँ, मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं कि ये भाई आप सुनो, भाई आप सुनो, भाई आप सुनो। परंतु नारद मुनि को उत्तानपाद संबोधन दे रहे हैं कि हे ब्राह्मण, ब्राह्मण प्रत्येक श्लोक में आ रहा है, ब्राह्मण तात्पर्य यह है कि आप ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का अर्थ होता है सर्वज्ञ, सर्व सर्व चीज के बारे में ज्ञ, ज्ञाता, जाने, इसे सर्वज्ञ कहते हैं। तो आप तो सब कुछ जानते हो, और आप तो यह भी जानते होगे कि मेरा पुत्र कहाँ है, तो आप ही बता दीजिए ना कि मेरा पुत्र ध्रुव कहाँ पर है। इस प्रकार से उत्तानपाद अपने पुत्र ध्रुव की चिंता कर रहे हैं कि वहां ये कहाँ खा रहा होगा, कहाँ सो रहा होगा, जिंदा होगा या मर गया होगा, क्या भरोसा। तब नारद मुनि बहुत सुंदर बात कहते हैं। नारद उवाच मामा शुच, गीता में भगवान ने 18वें अध्याय के 66 के श्लोक में क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। क्या मां शुच, वही शब्द यहां पर नारद मुनि कह रहे हैं, मां शुच। भगवान ने तो एक ही बार कहा था, ये दो दो बार मां मां शुच। शुच का अर्थ होता है डरो मत, शुच का अर्थ होता है शोक, डर, और मां का अर्थ होता है नहीं, शोक मत करो, डरो मत। क्यों डरो मत? स्वस्तयनम देव गुप्तम विषाम पते, तुम्हारा बालक बियर बार में दारू पीने नहीं गया है, तुम्हारा बालक किसी थिएटर में फिल्म देखने के लिए नहीं गया है, तुम्हारा बालक भगवान को प्राप्त करने के लिए गया है, भगवान की भक्ति करने के लिए गया है, तो भगवान निश्चित रूप से उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि देव गुप्तम, भगवान सबके रक्षक हैं। तत् भाव विज्ञाय प्रवक्षे यद् यशो जगत्। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं भगवान उनकी निश्चित रूप से रक्षा करते हैं। गर्भ में रहने वाले बालक की भगवान रक्षा करते हैं। परीक्षित महाराज जैसे परीक्षित महाराज की गर्भ में भगवान ने रक्षा की, तो जो व्यक्ति उस भगवान की भक्ति करने जा रहा है तो उनकी रक्षा क्यों नहीं करेंगे। त्वमेव वत्साश्रय भृत वत्सलम, भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। जैसे एक गाय अपने बछड़े की रक्षा करती है वैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं निश्चित रूप से। यह सारी दुनिया यदि किसी को मारने में तुल जाए, किसी भक्त को मारने के लिए तैयार हो जाए, परंतु भगवान उस भक्त का एक बाल भी बाका नहीं होने देते हैं। क्योंकि इस संसार के लोग मारने वाले केवल दो हाथ वाले हैं। संसार के लोग, मान लीजिए संसार के लोग भक्तों को दुखी कर रहे हैं तो उनका हाथ कितना है? दो। नारायण नाम के कवि कहते हैं, द्वय हाथन वारो सके जन को कहां बिगाड़। दो हाथ वाला भगवान के भक्त का क्या बिगाड़ सकता है? नारायण रखवार है जाके भुजा हजार। हजारों हाथ वाला जिसकी रक्षा करने के लिए बैठा हो, दो हाथ वाला उसका क्या बिगाड़ सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। डरो मत, भगवान की भक्ति करने के लिए गया है। और आप देखना वह बालक आगे चलकर तीनों भुवन में उसका यश फैल जाएगा। तुम्हें तो कितने लोग जानते हैं ये उत्तानपाद, तुम राजा हो, राजा होकर भी तुम्हें कितने लोग जानते हैं। तुम्हारे पुत्र को तीनों भुवन में 14 लोक में सब लोग जानेंगे, ऐसा यश प्राप्त करके आएगा। क्योंकि वह इस संसार का सबसे बड़ा काम भगवान की भक्ति करने गया है। भगवान की भक्ति सबसे बड़ा काम है। यदि कोई भगवान की भक्ति करता है तो वह यशस्वी बन जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को पूछा कि हे राय रामानंद, इस संसार में सबसे बड़ा यश क्या है? जैसे किसी को नोबेल प्राइज मिलता है तो उसका यश हो जाता है, तो यश क्या है? तब राय रामानंद ने उत्तर दिया कि गले में कंठी और सिर में तिलक और अपने आप को भक्त कहला देना। कोई व्यक्ति हमें भक्त कह दे, भक्ति संग भक्त की संज्ञा मिल जाना, ये सबसे बड़ा यश है। क्योंकि डॉक्टर, वकील और इंजीनियर, ये जो डिग्री है, ये जो यश है, ये केवल 100 साल के लिए रहते हैं, परंतु भक्त का यश तो करोड़ों करोड़ों वर्ष तक रहता है। ध्रुव महाराज आए और आकर चले गए, करोड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी ध्रुव महाराज की कथा सब लोग बोल रहे हैं। नरसिंह मेहता 500 वर्ष हो गया लेकिन आज भी नरसिंह का नाम प्रथम है भक्तों में। मीराबाई, उनको धाम में चले गए 500 वर्ष हो गया, परंतु भक्ति जो लोग करते हैं उनका यश नित्य रहता है। परंतु जो भक्ति नहीं करते हैं और संसार के भौतिक काम करते हैं उसका भी यश होता है परंतु नित्य नहीं होता है। मैं एक दृष्टांत दूं, आज से 100 साल पहले, 50, 60, 70 साल पहले गांधी जी का नाम प्रत्येक न्यूज़पेपर में आता था। गली गली मोहल्ले में गांधी जी का जय जयकार होता था। लेकिन आज गांधी जी को लोग गाली देते हैं और गांधी जयंती के दिन भी गांधी जी का छोटा सा फोटो पेपर में आपको देखने मिलेगा। कौन पूछता है? एक दिन कपिल देव का नाम इस संसार में सभी लोगों के पास था, बहुत सुंदर क्रिकेटर, बॉलर इत्यादि। लेकिन आज कपिल देव को कौन पूछता है? कहां गया उसका यश? ये जो यश है कुछ वर्षों के लिए होता है परंतु भक्ति नामक यश नित्य होता है। तो आपका पुत्र तीनों भुवन में यश फैलाएगा। सुदुष्करम कर्म कृत्वा लोकपाले रपि प्रभु एष्यत्य चरितो राजन यशो विपुलयस्तव। विपुल प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र ऐसा कार्य करने गया है, वो जो कार्य करने गया है और उस कार्य से उसे जो प्राप्त होगा वह चीज बड़े बड़े देवताओं के पास भी नहीं है, ऐसी चीज प्राप्त करके आएगा। इसलिए हे राजन, आप उसका टेंशन मत लो, शोक मत करो, बहुत जल्द आपका पुत्र वापस आ जाएगा। इस प्रकार से नारद मुनि कह के वहां से चले गए। मैत्रेय जी यह कथा विदुर जी को सुना रहे हैं। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी कहते हैं, इति देवर्षिणा प्रोक्तम विशुत्य जगतीपति राज लक्ष्मी मनादृत्य पुत्र मेवान चिंतयत। जब नारद मुनि चले गए तब महाराज उत्तानपाद रोज प्रतिदिन निरंतर अपने पुत्र ध्रुव की राह देख रहे थे कि कब ध्रुव घर पे आएगा, कब ध्रुव घर पे आएगा। तो उत्तानपाद राह देख रहे हैं कि ध्रुव कब घर पे आएगा। अब मैत्रेय जी अपना कैमरा वहां पर लेकर जा रहे हैं जहां पर ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए खड़े हो चुके हैं। अब अगले प्रवचन में ध्रुव महाराज किस प्रकार से पहले महीने में तपस्या करेंगे, दूसरे महीने में, पांच ही श्लोक में अर्थात 6 महीने में ध्रुव महाराज भगवान को सामने प्रकट कर देंगे। आगे ये कथा आएगी, तो ये कथा आगे आएगी। उत्तानपाद ध्रुव महाराज की राह देख रहे हैं, तो उत्तानपाद को राह देखने दीजिए, हम भी राह देखते हैं एक वीक के लिए, और अगले रविवार से ये कथा आगे बढ़ेगी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।